3 दिसंबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में चुनाव प्रचार, धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांगे।
एक राजकुमार अयोध्या से निकलता है, 14 साल वनवास में रहता है और जब वापस लौटता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाता है।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मौसम परिवर्तन शिखर सम्मेलन शुरू, विश्व विकलांग दिवस पर आपको सुनवाएंगे दृष्टिबाधित पंकज सिन्हा की कहानी।
जो रीडिंग मटेरियल्स है वो तो देखिए ना पहले एक्सेसिबल थी ना आज एक्सेसिबल है, वो इनएक्सेसिबिलिटी तो प्रॉब्लम हमेशा रही।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से सुनिए। झारखंड के जमशेदपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन धोखे की राजनीति करता है, जबकि बीजेपी का भरोसा जनता की सेवा करने में है। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में एसपीजी संशोधन बिल को पारित करा लिया। इस संशोधन के बाद एसपीजी की सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ही मिलेगी। हाल ही में गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई थी, जिसका कांग्रेस विरोध करती आई है। इस बिल पर मतदान के दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपने शुरुआत की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। हालांकि लंदन में इससे जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आलोचना की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इमैनुअल मैक्रों का नेटो को ब्रेन डेथ से पीड़ित कहना काफी खतरनाक और अपमानजनक है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि अगर नेटो उसकी कुर्द लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन नहीं करता है तो वो बाल्टिक की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे गठबंधन का विरोध करेगा। पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ बीती रात मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम दोनों और बाल्टिक देश लंदन में साथ नहीं आ सकते। हम साथ आकर मुद्दों पर बात कर सकते हैं। हम जिन्हें आतंकी संगठन मानते हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नेटो के हमारे दोस्त अगर उन्हें आतंकी संगठन नहीं मानते हैं तो फिर हम उनके खिलाफ ही खड़े होंगे। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अगले महीने से अमेरिका की तकनीकी कंपनियों पर टैक्स लगाने की फ्रांस की योजना की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचना की है। इस टैक्स से अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र पर खासा असर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि वो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन उन पर जो टैक्स लगाएगा वो अमरीका होगा न कि फ्रांस। इसके जवाब में सोमवार को अमरीका ने फ्रांस की विलासिता के सामानों पर 2.4 अरब डॉलर टैक्स लगाने की धमकी दी है। फ्रांस ने चेताते हुए कहा है कि इस तरह की हरकत अस्वीकार्य होगी। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो अमरीकी कंपनियां हैं, मैं उन कंपनियों पर टैक्स लगाना चाहता हूँ, उन पर फ्रांस टैक्स नहीं लगा सकता। अगर फ्रांस उन पर टैक्स लगाने जा रहा है तो ये अचानक है। मैं लोगों को अमरीकी कंपनियों से लाभ नहीं लेने दूंगा, क्योंकि अगर कोई इनसे फायदा ले सकता है तो वो हम हैं ना कि फ्रांस। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि औसत तापमान बताता है कि 2010 के बाद ये दशक रिकॉर्ड रूप से गर्म रहने वाला है। मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु पर जारी बातचीत में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस साल वैश्विक तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो पूर्व औद्योगिक औसत से अधिक था। इसके बाद साल 2019 तीसरा गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। संगठन के महासचिव का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। एक सदी में जो लू और बाढ़ आती थी वो अब लगातार आ रही है। जिम्बाब्वे के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी कोई वसीयत नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय मीडिया में प्रसारित कोर्ट के दस्तावेजों में बताया गया है कि उनकी संपत्ति में $1 करोड़ नकद, 4 घर, 10 कारें, 1 खेत और 1 बागीचा शामिल है। मुगाबे की बेटी ने जानकारी कोई वसीयत न मिलने के बाद हाईकोर्ट को दी है। जिम्बाब्वे के कानून के अनुसार अगर कोई शख्स बिना वसीयत किए मरता है तो उसकी संपत्ति उसके पति या पत्नी और बच्चों के बीच बांटी जाती है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में दो चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने खूंटी और जमशेदपुर में अपनी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और धारा 370 का भी उल्लेख किया। तब भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। लगभग इसी वक्त अपनी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने से मना कर दिया गया। विपक्ष ने इसे सियासी साजिश करार दिया है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड में 7 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस चरण में विधानसभा की 20 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास के सिर जमशेदपुर पूर्वी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमशेदपुर में आकर उनके लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में अस्थायी सरकार दी, इसलिए विकास के तमाम काम संभव हो सके। प्रधानमंत्री ने इससे पहले खूंटी में भी एक जनसभा को संबोधित किया। अपनी दोनों ही सभाओं में उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और राम मंदिर मसले के शांतिपूर्ण समाधान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा,
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अब हट चुका है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को विकास और विश्वास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी आदिवासी अंचल में ही जन्मे पले बड़े उपराज्यपाल जी के कंधे पर है। इसी तरह राम जन्मभूमि को लेकर जिस विवाद को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों ने लगातार लटकाए रखा, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया। और भगवान राम तो जब अयोध्या से निकले थे तब तो वो राजकुमार थे, लेकिन जब अयोध्या वापिस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। ये कैसे हुआ? एक राजकुमार अयोध्या से निकलता है, 14 साल वनवास में रहता है और जब वापिस लौटता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाता है, क्योंकि 14 साल राजकुमार राम ने आदिवासियों के बीच में बिताए थे, आदिवासियों ने उनको संस्कारित किया।
खूंटी में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। तब वे राम मंदिर निर्माण की अड़चनें दूर होने का उल्लेख कर रहे थे। प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं के दौरान प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी का हेलीकॉप्टर सिमडेगा जिले के लंबोई में रोक दिया। तब उन्हें वहां से तोरपा के लिए उड़ान भरनी थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी तमार में ही रोक दिया। उन्हें तब गुमला जिले के सिसई के लिए उड़ान भरनी थी। इससे नाराज हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साजिश के आरोप लगाए। हेमंत सोरेन ने कहा,
और मैं अभी भी यहाँ तमाड़ के नवाडी गांव में आम सभा करके यहाँ पर 1-1.5 घंटा से हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, लेकिन नहीं निकल पा रहा हूँ। जब चुनाव प्रचार प्रसार चरम सीमा पर है, अब ऐसे स्थिति में बाकी दलों के चुनाव को प्रभावित करने का ये कौन सा रणनीति इन लोगों ने अपनाया है, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है।
बाद में दोनों ही नेताओं ने अपनी सभाएं की। हेमंत सोरेन ने सिसई की सभा को फोन पर संबोधित करने के बाद चक्रधरपुर में जनसभा की। वहीं बाबूलाल मरांडी ने गुमला में लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।
सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट के संशोधन के पुरजोर कोशिश की थी और यहां से तो पारित करके पास करा करके दिल्ली भेज दिया था। फिर राष्ट्रपति से हम लोगों ने कहा कि अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन हो जाता है तो झारखंड में जो आदिवासी है वो आदिवासी रह नहीं जाएंगे, यहाँ से सब बाहर भगा दिए जाएंगे। और तब कहीं वो सीएनटी एसपीटी एक्ट जो कानून बनाया था सरकार ने, उसको हम लोगों ने वापस करवा लिए थे।
इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे उनके ही मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे सरयू राय के समर्थकों ने वहां रोड शो कर लोगों से समर्थन की अपील की। यह उसी वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री वहाँ आयोजित सभा में रघुवर दास के लिए वोट मांग रहे थे। बहरहाल लगातार बढ़ती सियासी तपीस ने झारखंड में चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। 2 दिन बाद दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। राजनीतिक टीकाकार कहते हैं कि इस फेज में हुई वोटिंग यह तय कर देगी कि झारखंड में बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाएगी या नहीं। रवि प्रकाश, BBC रांची।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2012 में 17 आदिवासियों के मारे जाने के मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को विधानसभा में इस जांच आयोग की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि सभी आदिवासी सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की एक तरफा गोलीबारी में मारे गए थे। अब भाजपा सरकार के कार्यकाल की इस घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
हाईकोर्ट के जस्टिस वी के अग्रवाल की जांच कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 28 जून 2012 को बीजापुर के सारकेगुड़ा में सीआरपीएफ और पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोगों का माओवादियों से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी की, जिसमें 7 नाबालिग समेत 17 आदिवासी मारे गए। सोमवार को जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई थी, जहां गर्मागर्म बहस के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के बस्तर के आदिवासी विधायकों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा ने कहा कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने मेरे को साल के गुड़ा घटना के लिए समिति के अध्यक्ष बनाए थे। मैं लगातार 3 बार गया हूँ। उस समय से मांग कर रहा था कि ये निर्दोष आदिवासी है, चारों तरफ घेर के भारतीय जनता पार्टी के उस समय सरकार थी, घेर के मारे हैं। इनको मौजा देना चाहिए, इनको कार्रवाई करना चाहिए।
विधायक और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में बस्तर में बड़ी संख्या में फर्जी मुठभेड़ हुए हैं।
बस्तर में 700 गांव खाली हुए हैं। बस्तर में लगभग 2% आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बस्तर में आदिवासियों को समाप्त करना चाह रही थी और उनके उद्योगपति मित्रों को बस्तर के खनिज संसाधन, बस्तर की जमीन सौंपना चाहती थी।
मोहन मरकाम ने मारे गए आदिवासियों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी मांग की।
जो सरकार के मुखिया उस समय रहे हैं, उस आदिवासियों के हत्या में सीधा सीधा उनका दोष है। हमने स्पष्ट मांग किया है, दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ पीड़ित परिवार जो है, उनको हर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा, उसके साथ साथ एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी मिले। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग किया है।
बस्तर में आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार लड़ाई लड़ रही सोनी सोरी का कहना है कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती, तब तक इस रिपोर्ट का कोई अर्थ नहीं है।
कि ये इतने लंबे समय के बाद ये इस तरह की जांच रिपोर्ट में साबित हो गया तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। ये जो रिपोर्ट दिया गया उसके अनुसार जो सरकार अगर कार्रवाई करती है और वो दिखाती है तो तब मानेंगे कि ये बहुत सही तरीके से जांच हुआ है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के आरोपों से अलग भारतीय जनता पार्टी न्यायिक आयोग की इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कहते हैं,
जो उसके लिए दोषी पाया जाए उसमें कार्रवाई और कहीं आपत्ति नहीं है। केवल जांच रिपोर्ट के आधार पर ये विषय नहीं बनता है कि किसी के ऊपर कार्रवाई हो जाए, मान लीजिए उसके बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो विश्वसनीयता इसी पर खड़ी हो गई कि जांच रिपोर्ट सही है क्या है, पहले लीक हो जा रही है सब रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी के विधायक इस मसले पर अब मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। वहीं पुलिस हमले में मारे गए लोगों के परिजन भी अगले 1-2 दिन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग को लेकर मुलाकात कर सकते हैं। सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि राज्य सरकार का अगला कदम अब क्या होगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बीबीसी हिंदी रेडियो का दिन भर कार्यक्रम आप 25, 31 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे तक सुन सकते हैं। हमारे सभी रेडियो कार्यक्रम आप bbchindi.com पर लाइव भी सुन सकते हैं।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आज से मौसम परिवर्तन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसे COP25 का नाम दिया गया है। इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। हमारी साथी दिव्या आर्य भी मैड्रिड पहुंची हुई हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और पूछा कि वहां इस समय कैसा माहौल है।
मैड्रिड में इस वक्त 30,000 से ज्यादा डेलीगेट्स जमा हुए हैं। दो हफ्ते की ये कॉन्फ्रेंस है जिसको COP25 कहा जा रहा है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25। ये पार्टीज उन सदस्य देशों को रेफर करता है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर पिछले 24 साल से बातचीत कर रहे हैं। ये 25वां सम्मेलन है, इसीलिए इसको COP25 कहा जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट चेंज का 25वीं कॉन्फ्रेंस है जिसमें 50 वर्ल्ड लीडर्स शिरकत कर रहे हैं इन सभी डेलीगेट्स के अलावा। जब सोमवार को ये शुरू हुई तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पहले सेशन में शामिल हुई जो वल्नरेबल कंट्रीज यानी उन देशों की बात को समझने के लिए रखा गया था जिन पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और सम्मेलन की शुरुआत की संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने, जिन्होंने कहा कि अब वक्त नहीं बचा है और राजनीतिक नेताओं को जल्दी ही तीव्रता से अपने कदम बढ़ाने होंगे ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके।
दिव्या, ये बताइए क्या एजेंडा है, क्या इस पूरे सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर विचार होगा?
इस सम्मेलन में पेरिस अग्रीमेंट में जो तय हुआ था उस पर विचार होना है। और पेरिस अग्रीमेंट वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सभी सदस्यों ने मिलकर ये तय किया था कि हर देश क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अपने स्तर पर क्या क्या करेगा। इनको कमिटमेंट्स कहा गया था, कुछ टारगेट्स तय किए गए थे। और अब जो 2019 का ये सम्मेलन है उसमें ये देखा जाएगा कि उन टारगेट्स पर अब तक देश कितना काम कर पाए हैं। 2020 में अगला जो सम्मेलन है वो ग्लासगो में होगा और उसमें फिर ये तय किया जाएगा कि 2050 तक क्या टारगेट्स होने चाहिए। तो एक तरीके से अगला एक साल सब देशों के पास वो पूर्ति करने के लिए है जो उन्होंने पेरिस अग्रीमेंट में तय किया था पर अभी तक वो नहीं कर पाए। तो यही बहस अगले दो हफ्तों में होनी है।
दिव्या, आज ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें क्या कहा गया है?
आज चर्चा का केंद्र ये रिपोर्ट ही है क्योंकि इस रिपोर्ट ने ये पाया है कि 2010 से 2019 यानी जो पिछला दशक गया है ये विश्व की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे गर्म दशक रहा है। और ये तेज बढ़ते तापमानों की वजह साइंटिस्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन ही है। अब ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो देश कर रहे हैं उसमें भारत का भी नाम आता है, चीन का भी नाम आता है, लेकिन सबसे ऊपर अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा तो ले रहा है लेकिन अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट से अपने हाथ कुछ हफ्ते पहले खींच लिए थे, यानी कि वो अपने कमिटमेंट्स अब नहीं मानने वाला है। इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है और बहुत चर्चा का विषय भी है कि जब हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज की रोकथाम के लिए हर देश की जो कमिटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, जब उसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा तो इससे कैसे निपटा जाए। इससे बाकी देश जो छोटे देश हैं जिनको अमेरिका जैसे समृद्ध देशों से वित्तीय और अन्य सहायता की जरूरत है ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपट सकें, उनके साथ क्या होगा, यही सब बहस का विषय रहेगा। और दो हफ्ते बाद ये पता चलेगा कि अब देशों ने क्या बीड़ा उठाया है कि वो आने वाले साल में क्या करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज की इस क्लाइमेट इमरजेंसी का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसे रोका जा सके।
ये थी मैड्रिड से BBC संवाददाता दिव्या आर्य।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आज 3 दिसंबर है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं जज्बे और हौसले की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप मानेंगे कि सच में कुछ भी मुमकिन है अगर आपने ठान ली। ये कहानी है दिल्ली के हाई कोर्ट में वकालत करने वाले दृष्टिबाधित पंकज सिन्हा की। जानिए दृष्टिबाधित होने के बावजूद वो कैसे बने वकील, बता रही हैं सूर्यांशी पांडे।
अंधेरे से भला कौन नहीं डरता, आप भी डरते होंगे, लेकिन उसी अंधकार में रहते हुए कई लोगों को न्याय की रोशनी दिखा रहे हैं पंकज सिन्हा, जो अंधे कानून को करीब 13 साल से रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ समझ आया? धीरे धीरे इस खिड़की पर से धुंध हटेगी और फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज है 3 दिसंबर और ये तारीख संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाता है। और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरणा और हौसला देगी। ये कहानी है दृष्टि बाधित पंकज सिन्हा की, जो करीब 13 साल से दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर वकील काम कर रहे हैं। अब कहानी का सभी अंश हम ही बता देंगे, तो पंकज सिन्हा क्या बताएंगे, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं।
मेरे पैदा होने के बाद, क्योंकि मैं बाय बर्थ फ्रॉम बर्थ ब्लाइंड था, तो जैसे ही व्हेन आई वाज बोर्न दे माय पेरेंट्स कंसल्टेड डॉक्टर्स। तो उस टाइम पे रांची हमारे लिए काफ़ी मतलब बड़ा शहर होता था, तब बिहार यूनिफाइड बिहार था, तो रांची बड़ा शहर होता था। तो उन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, डॉक्टर्स ने बोला देखो ये इसकी आईज अभी सही तो नहीं हो सकती। तो वहाँ से ये तो क्लियर हो गया था कि डिसेबिलिटी तो मेरी क्योर नहीं हो सकती।
पंकज सिन्हा का परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो वकील बने।
प्रिसाइसली जब मैं क्लास 8th में था यानी 96 था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं लॉयर बनूंगा, और लेकिन तब मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं।
38 साल के पंकज सिन्हा झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। पिता का नाम अजीत सिन्हा है, जिनका वकालत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे और माँ उषा देवी पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। पिता का 2016 में दिल की बीमारी के चलते देहांत हो गया। पंकज सिन्हा के 5 भाई और एक बड़ी बहन है। उनका परिवार उन्हें प्रोफेसर बनाना चाहता था, और इसके लिए सेंट स्टीफन्स में पंकज सिन्हा ने हिस्ट्री ऑनर्स में डिग्री भी हासिल की। लेकिन इश्क तो काले कोट से था, तो पंकज ने ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर से वकालत की। लेकिन वकालत में तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और दृष्टि बाधित होने से उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं आई।
जो रीडिंग मटेरियल्स है वो तो देखिए ना पहले एक्सेसिबल थी ना आज एक्सेसिबल है, वो इनएक्सेसिबिलिटी तो प्रॉब्लम हमेशा रही। जब मैं लॉ फैकल्टी में था तो हमारी एक एविडेंस की टीचर थी, वो मुझे बाई मेल जो है वो सॉफ्ट कॉपीज भेज देती थी, या कुछ फ्रेंड्स थे वो बुक्स वगैरह जैसे पढ़ देते थे तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता था, तो कई बार उससे और अपने ब्रेल में नोट्स बना लेता था। तो ब्रेल में बुक्स नहीं रही।
तो ये तो तब की बात हुई जब पंकज लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, अब तो वो वकील हैं, वो भी हाई कोर्ट में। तो क्या हाई कोर्ट में दृष्टि बाधित वकीलों के लिए किसी तरह की सुविधाएं हैं?
यहाँ अगर आप हाई कोर्ट में देखेंगे तो एक लिफ्ट है, लिफ्ट लगे हैं और कुछ रैंप्स वगैरह बने हैं, लेकिन उस लेवल का जो एक लॉयर को रिक्वायर्ड है कि कोर्ट रूम्स जो एक्सेसिबल बनाए जाएं, जैसे कि जब एक अपोजिट का काउंसिल अगर कोई केस फाइल कर रहा है तो उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में मटेरियल दे दे, चाहे वो उसे सीडी में दे दे, पेन ड्राइव में दे दे, या उसको ब्रेल में करवा के दे। इस तरीके की शायद ना तो अवेयरनेस है हमारे यहाँ पर, ना लोग इतना बॉदरेशन लेते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए मुझे आज पढ़ना हो, ये चीजें अवेलेबल नहीं, मतलब आज मैं लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ नहीं सकता।
इन तमाम दिक्कतों के बावजूद अगर दृष्टि बाधित पंकज सिन्हा यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो दोस्त कुछ भी मुमकिन है। बस पंकज सिन्हा का ये संदेश याद रखिए,
किसी के पास पैर नहीं है तो उसके अपने तो जो चैलेंजेस हैं उसको अपनी आप स्ट्रेंथ बनाएं, और यही कि कैसे काम करना है इस पे ज्यादा फोकस करें रादर देन कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है।
पंकज सिन्हा वही वकील हैं जिन्होंने 2011 में बहरे लोगों को गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के हक में केस लड़ा था और जीता भी था। यह केस काफी प्रसिद्ध हुआ था।
ये थी सूर्यांशी पांडे की रिपोर्ट। हाल में राजधानी और आसपास के सटे इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरों को छू रहा था। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण का एक बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों यानी पंजाब और हरियाणा में किसानों का पराली जलाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसान ने पराली जलाई हो। पंजाब के 2 गांवों के किसानों ने इस साल पराली नहीं जलाई है, और इस वजह से जिला प्रशासन उनका सम्मान भी करने जा रहा है। सुनिए पंजाब से हमारे सहयोगी सुरेंद्र मान की रिपोर्ट मानसी दास की आवाज में।
बीते महीने देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। मामला बढ़ा और देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों को प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। पंजाब के कई इलाकों के किसान पराली जलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोगा जिले के रणसिंह कलां और रणसिंह खुर्द गांव के करीब 600 किसान इस कारण चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने पराली नहीं जलाई। किसानी का काम करने वाले इकबाल सिंह कहते हैं,
सानूं 3 साल हो गए बढ़िया रिजल्ट आ रहा है कणक दे झाड़ दा।
बीते 3 साल से हम पराली नहीं जला रहे हैं और इससे हमें अच्छी फसल भी हो रही है। हमारे खेत में अब खरपतवार भी कम होने लगी है और जमीन भी नरम बन गई है। पहले जमीन इतनी सख्त हो जाती थी कि हल चलाना मुश्किल हो जाता था।
रणसिंह कला और रणसिंह खुर्द गांव के किसान इससे पहले खेत में हल करने के लिए हैप्पी साइडर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए साइडर मशीनें खुद खरीद ली हैं। हरदीप सिंह कहते हैं,
तीन साल हो गए जी इसे तरह सीधी बिजाई कर दें।
बीते तीन साल से हम गेहूं की खेती इसी तरह से करते आ रहे हैं। 2016 में हमने किराए पर हैप्पी साइडर लिया था और 2 एकड़ के खेत का काम किया था। इसके लिए एक तरफ खेती में लगने वाला हमारा खर्च कम हुआ तो दूसरी तरफ हमें खरपतवार मारने के लिए दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इसके बाद तो हमने अपनी खुद की मशीन खरीद ली, इससे पर्यावरण तो साफ हो ही रहा है, खेतों में हमारी लागत भी कम हुई है।
पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण कम करने को ध्यान में रखकर खेती के तरीके अपनाने के लिए जिला प्रशासन अब इन किसानों का सम्मान करने जा रहा है। मोगा जिले के कृषि विकास अधिकारी जसविंदर सिंह ब्रार बताते हैं,
हम किसानों को सब्सिडी देते हैं। 5 दिसंबर को विश्व सॉयल हेल्थ डे है, उस दिन हम इन किसानों के सम्मान में खास कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रशासन किसानों का सम्मान करेगा, पराली नहीं जलाने के लिए उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन से किसानों की नाराजगी नहीं है। जिले के कई किसान प्रशासन से इस बात पर खफा हैं कि केवल छोटे किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जबकि बड़े किसानों को इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। हरदीप सिंह कहते हैं,
जेड़े सब्सिडी दे रही है सरकार
किसानों को कोई सब्सिडी नहीं देती, वो कारखानों और मिल मालिकों को सब्सिडी देती है। किसान को 45,000 खर्च वाला एक काम करने के लिए 1 लाख तक खर्च करना पड़ता है।
वहीं इकबाल सिंह कहते हैं कि अधिक जमीन होने के कारण उन्हें पहले ही सब्सिडी के लिए योग्य नहीं माना गया।
मैं अपनी 10 किलियां आग लगाई जी, जो मर्जी पटवारी देख।
मैंने 10 एकड़ जमीन पर पराली नहीं जलाई। इसके बारे में आप राजस्व विभाग से भी बात करके पुष्टि कर सकते हैं। सरकार का कहना था कि सब्सिडी उन्हें मिलेगी जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। मैंने तो सब्सिडी के लिए आवेदन ही नहीं किया। 10 एकड़ जमीन वाले किसान पराली नहीं जलाते, कम जमीन वाले किसान जलाते हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने पराली जलाई भी है और फिर सब्सिडी की मांग भी की है। राजस्व विभाग को इस पर भी निगाह रखनी चाहिए।
क्या बीते साल सरकार से उन्हें कोई लाभ मिला?
मिले जी सानू 5-5 हजार रुपया मिले सानू।
हाँ, बीते साल 5,000 रुपए मिले थे, लेकिन सभी किसानों को ये मदद नहीं मिली थी, केवल कुछ किसानों को ही पैसा मिला था।
पंजाब के मोगा जिले के 2 गांव के ये किसान और इनकी नई कोशिश अन्य किसानों और दूसरे राज्य के किसानों के लिए एक उदाहरण है। पराली न जलाकर और उसे खेत की मिट्टी में ही दबाकर इन्होंने न केवल अपनी जमीनें अधिक उर्वर और नरम बनाई हैं, बल्कि इन्हीं जमीन से उन्हें अधिक पैदावार भी मिल रही है।
नजर दौड़ाते हैं आज के खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज सबसे पहले बात बॉक्सिंग की। 6 बार की विश्व चैंपियन भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में जारी बिग बाउट लीग के पहले संस्करण में अपनी विजयी शुरुआत की है। इस साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मैरीकॉम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सविता को फ्लाईवेट वर्ग में 3 राउंड में एक तरफा अंदाज में हराया। मैरीकॉम के खासकर बाएं हाथ के पंच निर्णायक रहे और कुछ चुनिंदा पंचों की मदद से ही उन्होंने मुकाबला अपने नाम किया। पहला दिन पंजाब पैंथर्स के नाम रहा, जहां उड़ीसा वॉरियर्स को 5-2 से हार का सामना करना पड़ा है। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। किदांबी श्रीकांत की अगुवाई में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 13वें एशियाई खेलों के फाइनल में सोमवार को श्रीलंका को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। श्रीकांत ने दिनुका को 17-21, 21-15, 21-11 से हराया। सिरील वर्मा ने इसके बाद सचिन डायस को 21-17, 11-5 से पराजित किया। आरन जॉर्ज और श्याम शुक्ला की जोड़ी को युगल मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कृष्णा प्रसाद और ध्रुव कपिला ने दूसरा युगल मैच जीतकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। महिला वर्ग में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका सामना अब श्रीलंका से होगा। खेल समाचारों में आज इतना ही।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। झारखंड के जमशेदपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन धोखे की राजनीति करता है, जबकि बीजेपी का भरोसा जनता की सेवा करने में है। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में SPG संशोधन बिल को पारित करा लिया। इस संशोधन के बाद SPG की सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ही मिलेगी। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे कपिल देव सिंह, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।